समर्चना में भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनंत गोपी परिक्रमण की जय, नामाचार्य श्री राधा शास्त्र की जय, प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अरविंद राघव शिवासानी गौर भक्त की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गौर योजना श्याम तुम राधा श्री गौर भक्त की जय, गंगा माई की जय, गंगा माई की जय, तुलसी महाराज की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, सौ और गौरी सुन अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति सकलं कृतम् वाञ्छाकल्पतरूपेण कृपाचन्दोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम अध्याय के आज श्लोक संख्या 10 है। अप्रयातम अप्रयातम तदस्माकम बलम भीष्माभिरीक्षितम प्रयातम तु इदं तेषां बलम भीमाभिरक्षितम अप्रयातं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं प्रयातं तु इदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अप्रयातं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितं
पर्याप्तं तु भीष्माभिरक्षितं।
हमारी शक्ति अपरिमय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अनुवाद द्वारा ये हमारी शक्ति अपरिमय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीम की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, तो युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। प्रथम अध्याय है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम महाभारत के ही प्रसंग में है, क्योंकि भगवद्गीता महाभारत का ही भाग है। जैसे कि हमने प्रारंभ में बताया था, भूमिका में भीष्म पर्व में ये भगवद्गीता उपलब्ध है। 25वां अध्याय से लेकर 42वां अध्याय तक महाभारत के भीष्म पर्व में ये भगवद्गीता का उपदेश प्राप्त होता है। तो एक तरह का महाभारत का ही ये प्रसंग चल रहा है, समझ लीजिए। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, दुर्योधन के द्वारा हमारी शक्ति अपरिमय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने पर्याप्तम शब्द का अनुवाद किया है, किया है अपरिमय, अपरिमय का अंग्रेजी में मतलब होता है इनमेजरेबल, इसकी तुला नहीं की जा सकती है, इसको मापा नहीं जा सकता है, इसका मापदंड नहीं किया जा सकता है। किसका मापदंड नहीं किया जा सकता है? भीष्म पितामह की शक्ति का मापदंड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अप्रयासम का ईयर बता है, प्रभुपाद जी ने विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं अप्रयासम का अर्थ यह है कि प्रयास नहीं है। भीष्म पितामह जो है अपने पूर्ण शक्ति के द्वारा शायद युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि लगता है कि पांडवों से उनका बड़ा स्नेह है, तो पर्याप्त मात्रा में नहीं दिखाई पड़ रहा है उनका उत्साह। तो ये भी विश्वनाथ जी ठाकुर इस तरह से बता रहे हैं। तो अलग अलग एंगल से जो आचार्य लोग हैं एक ही बात को समझाते हैं, दोनों ही सही हैं। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का ऐसा कहना है कि इमेजरेबल है। प्रभुपाद जी भी शिला श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण की टीका को लेके ही अपनी टीका प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन जो उनके शिक्षा गुरु हैं शिला विश्वनाथ चंद्र ठाकुर वो अलग एंगल से ले रहे हैं श्लोक को। तो दोनों ही सही हैं। श्रील प्रभुपाद जी आप चाहते थे कि इन श्लोकों को अलग अलग एंगल से हम लोग देखें, समझने का प्रयास करें और अपनी चेतना को शुद्ध करें। तो उद्देश्य क्या है? विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भीष्म पितामह के बारे में इसलिए बता रहे हैं दुर्योधन की वो पर्याप्त मात्रा में शायद युद्ध नहीं करेंगे, द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ाने के लिए, कि कम से कम आप जो है वो पर्याप्त मात्रा में उत्साह रखिएगा, आप युद्ध करिएगा, क्योंकि ये शायद नहीं करेंगे, इनका बड़ा स्नेह है पांडव। तो इस तरह से विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं। देखिए दुर्योधन जो है हमेशा उसका द्वेष बना रहा भीम से, हालांकि दुर्योधन कई बार पराजित हुआ भीम से, बहुत बार परास्त हुआ युद्ध में, और इस प्रकार तो इस प्रकार जो है भीम का जो है हमेशा सदैव दुर्योधन के प्रति ईर्ष्या की भावना बनी हुई, और दुर्योधन हमेशा चाह रहा था भीम को किसी ना किसी तरह योजना बना रहा था किसी ना किसी तरह से भीम को मारा जाए। तो ये दुर्योधन के हृदय में हमेशा ये भावना बनी रहती। भीम और दुर्योधन एक तरह के समकालीन थे, समानता का स्तर था उनमें आपस में, और इसी तरह से हम देखते हैं कृष्ण और अर्जुन में भी समानता का स्तर है, लेकिन मित्र के रूप में, इनका क्या शत्रु के रूप में। नकुल सहदेव जब मिलते थे कृष्ण से तो चरण छूते थे भगवान, लेकिन जब भीम और युधिष्ठिर को भगवान मिलते थे तो कृष्ण जो है उनके चरण छूते थे, युधिष्ठिर महाराज के चरण छूते थे भगवान। देखिए कितनी मर्यादा का पालन करते हैं भगवान, जब नर लीला करते हैं तो वो दिखाते हैं कि किस तरह से आचरण करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो स्वयं भगवान परम भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के चरण छूते हैं, भीम के चरण छूते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि दुर्योधन के साथ जो व्यवहार था भीम का वो एक समान का था, एक स्तर का था, लेकिन दुश्मन के रूप में। तो भीम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, भीम तो बड़ा शक्तिशाली था, वायुपुत्र है भीम, भीम जो है वायुपुत्र है, वायु के पुत्र है, और भीम को एक जगह भगवद्गीता में भी विक्रोधर कहा गया है। विक्रोधर का मतलब जो बहुत अति भोजन खाने वाले है, मतलब उनको संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है। सामान्य भोजन हम लोग लेते हैं तीन या चार या पांच चपाती की चावल लेते हैं, वो पर्याप्त नहीं है, संपूर्ण भंडार अनाज भंडार ही पर्याप्त नहीं है उनके लिए। भीम जो है खूब खाने वाले थे, विक्रोधर कहा गया। तो इस प्रकार असीमित शक्ति है भीम में, और जब बचपन में भी जब द्रोणाचार्य के वहाँ पर गुरुकुल में वो सीखने गए थे तो बचपन में वो लोग क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, और क्या खेलते थे? भीम जो है कौरवों को, कौरव बालक बोलते थे उनको पटक देते थे, उनको जमीन पटक देते थे, या ये जो कौरव जो बालक होते थे वो पेड़ में चढ़ते थे फल क्यारी तोड़ने के लिए, तो भीम क्या करते थे वृक्ष को हिला देते और वो फल भी नीचे गिर जाते थे, और वो जो सब बेचारे बच्चे हैं जो बालक हैं वो भी सब नीचे गिर जाते। तो इस तरह से दुर्योधन देख रहा था कि भीम में इतनी शक्ति है और इसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमें इतनी शक्ति नहीं, तो हृदय में उसके जो है ईर्ष्या भी बनी रही और हमेशा वो योजना बनाता कि कैसे मैं जो है भीम को मारूं। लेकिन जो सांप होता है सांप के साथ अब खेल नहीं करते, सांप के साथ जितना अधिक खेलेंगे उस थोड़ा सा भी तंग करेंगे तो आपको गुस्सा आता जानते क्यों, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या बनी होती है। ईर्ष्या जो है वो कारण है क्रोध का, ईर्ष्या कारण है सब कुछ, जितने भी अनर्थ है वो ईर्ष्या से जाते। ये भौतिक जगत में वहाँ पे ईर्ष्या के कारण, आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या नहीं है, वह करुणा है, कंपैशन है, वह प्रतियोगिता होती है दूसरे की सेवा के लिए, लेकिन ईर्ष्या नहीं होती है ना। तो ईर्ष्या के कारण हम लोग भौतिक जगत में आए हैं, और ईर्ष्या जो हर प्रकार के पाप और हर प्रकार के अपराध को जन्म देती है। जैसे छह प्रकार के जो वैश्य अपराध है उसका आधार भी ईर्ष्या ही है। हरि भक्ति सुखोदय में छह प्रकार के वैश्य अपराध बताए हैं, ईर्ष्या मन से करते हैं और ईर्ष्या के कारण हम लोग निंदा करते हैं। जहां भी निंदा हो रही है समझेंगे वहां ईर्ष्या शामिल, और जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ईर्ष्या के कारण हम क्रोधित हो जाते हैं किसी के ऊपर, थोड़ा सा कोई हम उत्तेजित करता है हमारी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करता है तो क्रोधित हो जाते हैं ईर्ष्या के कारण। तो क्रोधित होना, और ईर्ष्या के कारण जब सामने कोई व्यक्ति आता है, भक्त आता है, उसको देखकर खुश नहीं होते हैं, हर्षित नहीं होते हैं, ये भी ईर्ष्या के कारण होता है। और क्या बता रहे हैं, उसको दंडवत नहीं करते हैं, भक्त को देखकर दंडवत नहीं करते हैं, ये भी ईर्ष्या के कारण होता है। या फिर ईर्ष्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो फिर प्रहार होता है, मारने के दौड़ते हैं। और ये महाभारत का युद्ध जो है इसका ज्वलंत उदाहरण है, कौरवों की ईर्ष्या दिखाई पड़ती है, पांडव लोग तो हमेशा दया दिखा रहे थे उनके लिए, लेकिन कौरव जो है ईर्ष्या से भरे हुए थे। और आप देखते हैं ईर्ष्या जो है वो जन्म स्थान है सभी पापों का और सभी अपराधों का, तो भक्तों को चाहिए कि वो ईर्ष्या से बचे। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे सांप से, दुर्योधन की तुलना सांप से की गई है, तो उसको थोड़ा सा छेड़ा जाए तो वो क्रोधित हो जाएगा, इसलिए क्रोधित हो रहा था दुर्योधन बार बार। और योजना बना रहा था, उसने क्या किया, एक बार लड्डू में जहर मिला दिया और वो भीम को दिया। भीम ने सोचा कि भाई घर की बात है, तो लड्डू बड़े स्नेह से प्रेम से प्राप्त किया, लड्डू जैसे ही ग्रहण किया अचेत हो गया भीम, उसके बाद उठा के भीम को जो है गंगा जी में फेंक दिया। लेकिन भगवान की हमेशा कृपा रही है पांडवों के ऊपर, तो स्वयं भगवान को स्वयं भीम की रक्षा की। तो यहाँ पर भीम की हमेशा रक्षा भगवान करते थे, पांडवों की रक्षा करते थे। और साथ में ये बताया जा रहा है कि जैसे भीम जो है उन्होंने शपथ ली थी, अब द्रौपदी जी का जब अपमान हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था भरी सभा में, वहाँ पे भीम पांडवों में एक भीम थे जो जिन्होंने विरोध किया था, विदुर जी ने भी किया था, सात्विकी ने भी किया था, लेकिन भीम जो है वो पांडवों में से एक थे जिन्होंने विरोध किया। भीम बिल्कुल खुश नहीं थे, उन्होंने कहा कि मैं जो है इन 100 पुत्रों को छोड़ूंगा नहीं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मैं युद्ध भूमि में मारूंगा। और उसके बाद जब उसने देखा कि दुर्योधन अपनी जान दिखा रहा है द्रौपदी जी को, तो उसने कहा कि मैं इसकी जान तोड़ूंगा। और दुशासन जब वस्त्र ग्रहण कर रहा था तो फिर भीम ने क्या किया, शपथ ली कि मैं इसकी भुजाओं को हर पहनूंगा। तो इस प्रकार जो है भीम बहुत उत्साहित, बचपन से ही युद्ध करने के लिए हमेशा जो है भीम में उत्साह बना रहता है। और इसी कारण से हम देख रहे हैं यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं कि देखिए सामने वाले देखिए ये जो पांडव हैं ये भीम के द्वारा सुरक्षित हैं। और तो और भीम के साथ युद्ध करने की हमेशा इच्छा बनी रहती थी दुर्योधन की, हालांकि दुर्योधन भीम के सामने इतना शक्तिशाली नहीं था। तो भीम का उसने अपने महल में पुतला बनाया था लोहे का, और पुतला बनाकर प्रत्येक दिन प्रहार करता था गदे से, गदा लेकर जो है भीम के पुतले के ऊपर वो प्रहार करता था कि मैं यहाँ मारूंगा, यहाँ पे मारूंगा। और सुन के देखिए कितनी ईर्ष्या थी उसके लिए कि वो पुतला बनाकर जो प्रहार करता था, और भीम को मैं ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा। तो इस कारण से जो है दुर्योधन का सबसे अधिक जो भय था वो भीम से ही था कि अगर कोई मुझे मारेगा तो भीम मारेगा और कहीं मार सकता है। तो जब महाभारत का जो युद्ध हो गया और संपूर्ण सेनाओं का विनाश हो गया और दुर्योधन अकेले रह गए थे, तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय बड़ी करुणा आई, उन्होंने कहा इनको और मौका देना चाहिए। इतना सब होने के बाद ही देखिए वैष्णव इतने कृपालु करुणा उनके हृदय में होती है। ठीक है, भक्तिनो ठाकुर कहते हैं जहाँ दया होती है वहाँ द्वेष नहीं होता, और जहाँ द्वेष होता है वहाँ दया का कोई स्थान नहीं, भक्तिनो ठाकुर ने लिखा है। तो दुर्योधन के हृदय में द्वेष, लेकिन विश्व महाराज के हृदय में दया है क्योंकि वो वैष्णव है। वैष्णव हमेशा क्षमा में जाते, कितना भी कोई अपराधी हो, कितना भी कोई पापी हो, वैष्णव हमेशा जाएंगे माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो। ये वैष्णव के हृदय में स्वाभाविक जो है करुणा होती है, स्वाभाविक करुणा दिखाई पड़ती है, वो किसी जीव को भी दुखी नहीं कर सकते। तो इसलिए विश्व महाराज ने कहा कि देखिए ऐसा है आप एक कार्य करिए, क्योंकि आप तो आप बिल्कुल अकेले हैं, हम पांच छह पांडव रहिए और आप इनमें से किसी एक को चुन लीजिए, और अगर आप उसको परास्त किया तो पूरा राज्य आपका, और फिर हम लोग जिसे वनवास में चले जाए, राज्य पूरा होगा, अधिकार राज्य के ऊपर आपका होगा। तो कृष्ण नदी खड़े थे, कृष्ण ने कहा ये क्या कह रहे हैं आप, जिससे महाराज ने बोला आपने ये क्या कह दिया, इतना कुछ तो हो गया और इतने प्रयास से इतने कष्ट के बाद हमें ये राज्य प्राप्त हुआ है और आप लोगों ने कितना कष्ट उठाया है, उसके बावजूद भी आप फिर से उनको राज्य देना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि भीम के अतिरिक्त जो है कोई इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता आप में से, भीम के अतिरिक्त। अब इसको आपने चुनाव देने का मौका दे दिया, किसी को भी चुन लो, अब तो फंस गए हम लोग। लेकिन सौभाग्य के बाद ये थी कि उसकी इच्छा थी या परमात्मा के रूप में भगवान ने दुर्योधन को प्रेरणा दी, भाई आप भीम को ही चुनना, और प्रारंभ से बचपन से उसके हृदय में बचपन से यही भावना थी कि भीम के साथ किसी दिन मैं युद्ध करूंगा, उसको किसी दिन मारूंगा। क्षमता ना होने पर भी दुर्योधन के हृदय में भावना थी, तो उन्होंने कहा मैं तो भीम को ही चुनता हूँ, मैं भीम के साथ युद्ध करूँगा। तो भीम के साथ युद्ध करना आसान नहीं था, तो भीम के साथ युद्ध हुआ और बाद में आप जानते हैं कि परिणाम क्या हुआ। तो यहां पर यह भी लिखा है कि भीष्माभिरक्षितम और भीमाभिरक्षितम, है ना, भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित थे कौरव गण जो है, उन्हें निश्चित रूप से कौरव लोगों की रक्षा भीष्म पितामह, क्योंकि उस समय सेनापति थे, लेकिन पांडवों के सेनापति भीम नहीं थे, विराट के पुत्र थे जिनका नाम श्वेत था और वो सेनापति थे। लेकिन निश्चित रूप से भीम भी भयानक थे, जिसमें भीष्म पितामह भी आते, भीष्म और भीम दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का एक ही अर्थ। लेकिन जब यहां बताया जा रहा है कि अपर्याप्तम और पर्याप्तम, देखिए दो शब्द आए यहां पर, अपर्याप्तम और पर्याप्तम, है ना, तो कहने का अर्थ यह है कि भीष्म पितामह की जो बात कर रहे हैं कि भीष्म पितामह का हमारे साथ होना ये अपर्याप्त है, इसका मतलब क्या है कि अपरिमय है, यानी कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह पूरे सक्षम है और निश्चित रूप से भीष्म पितामह के कारण, क्योंकि हमारे साथ भीष्म पितामह है, निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, और भीम क्योंकि इतना अनुभवी नहीं है युद्ध में भीष्म पितामह की तुलना में, तो इसलिए उनकी पराजय जो है वो पर्याप्त रूप से है, पर्याप्त रूप से जो है उनकी पराजय होगी। लेकिन हमारी जो विजय वो अपर्याप्त है, क्योंकि भीष्म पितामह को के ऊपर विजय पाना कोई आसान नहीं है। भीष्म पितामह जो है शुरू से ही बड़े शक्तिशाली थे, और लेकिन हम जानते हैं कि पांडवों की रक्षा तो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी रक्षा भगवान कृष्ण करते हैं, जिनकी रक्षा कृष्ण करते हैं, तो उनको कौन मार सकता है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, तो कृष्ण स्वयं परम भगवान पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, तो कौरव उनका क्या बिगाड़ सकते हैं, भीष्म पितामह हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भीष्म पितामह तो साधारण योद्धा नहीं थे और प्रत्येक 10,000 योद्धाओं को मार चुका थे, महारथी थे वो, है ना। जब ये बताते हैं कि काशीराज की जो तीन कन्याएं थी उनका जब स्वयंवर हुआ तो भीष्म पितामह वहाँ पहुंचे थे और तीनों कन्याओं का अपहरण किया था, जिसमें अंबिका जो थी उनके पुत्र हुए धृतराष्ट्र। तो भीष्म पितामह के पास इतनी शक्ति थी और अकेले ही उन्होंने काशीराज, उनकी जो सेनाएं हैं और वहां एकत्रित राजा लोग थे जितने भी आए थे, अकेले ही भीष्म पितामह ने सबका जो है वहां सबको परास्त किया भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह इतनी शक्तिशाली थे, वो अकेले ही बहुत थे पांडवों के लिए, केवल परम भगवान श्री कृष्ण के होने के कारण जो है भीष्म पितामह जो है कमजोर। भीष्म पितामह निरंतर जो है युद्ध भूमि में परम भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन करते थे। खासकर भीष्म पितामह को ये देखकर बड़ा अच्छा लगता था, एक तो उन्होंने देखा जब हमने पहले ही बताया था कि कृष्ण जब रथ के जो है पहिए को उठा के भागे थे, तो वो जो रूप था वीर रथ का आस्वादन भीष्म पितामह कर रहे थे। और तो और भीष्म पितामह जो है जब उन्होंने देखा कि रथ पे बैठे हैं ये जो ये इतना सही नहीं है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान बहुत ऊंचाई में बैठे। सारथी का जो आसन होता है जब रथ में बैठा होता है सारथी, वो बहुत नीचे होता है और जमीन की धूल या पृथ्वी की जो धूल है फोड़कर सबसे पहले सारथी के ऊपर ही आती है, खून की छेटे भी सारथी के ऊपर सबसे पहले आती है। धूल बिल्कुल जमीन के साथ होता है, अगर यहाँ पे कृष्ण बैठे हैं बिल्कुल नीचे बैठे हैं, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि लगभग सारथी खड़े हैं। देखिए तो दिखाने के लिए ऐसे दिखा दिया है, लेकिन एक्चुअली वास्तव में कृष्ण जो है वो सारथी और नीचे की तरफ बैठे हुए हैं और जमीन के बिल्कुल नजदीक हैं। और कुरुक्षेत्र की जो धूली है, प्रधान जमीन की धूली है, वो धूली जो उनके शरीर में लग रही है, उनके बालों में लग रही है, उनके केश में लग रही है, उनके दिव्य शरीर में सच्चिदानंद वगैरह स्वरूप में लग रही है धूल। और फूल के छीटे हैं उसमें कृष्ण जो है बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये भीष्म पितामह ऐसे सौंदर्य का आस्वादन कर रहे हैं कुरुक्षेत्र, सोच के देखिए आप कि युद्ध भूमि में भी भगवान के जो भक्त हैं वो आनंद ले रहे हैं भगवान का दर्शन करके। ये भी सोच सकता है कि भीष्म पितामह कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, इसका अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते। तो इस प्रकार ये बातें यहाँ बताई गई हैं कि यहाँ बताएंगे भीष्माभिरक्षितम। तो भीष्म पितामह जानते हैं कि कितने शक्तिशाली थे, है ना, राज्य की चिंता थी उनको कौरवों की रक्षा के लिए, और स्वयं से ही वो तीन कन्याओं को उठा के लेके आ गए। तो भीष्म पितामह बहुत शक्ति थी। भीष्म पितामह जो है हम जानते हैं कि वो काफी बड़े योद्धा थे और प्रजा जो थी वो चाह रही थी कि महाराज शांतनु के बाद अगले जो राजा बने भीष्म पितामह, ये बड़ी इच्छा थी प्रजा की। लेकिन फिर भीष्म पितामह ने ये देखा कि महाराज शांतनु का विशेष प्रेम हो गया है एक मछुआरे की कन्या से जिनका नाम सत्यवती था। अब इस कारण से भीष्म पितामह पीछे हट गए, उनका विचार था लेकिन उन्होंने पीछे हट गए कि उन्होंने देखा कि पिता की इच्छा है विवाह करने की। तो क्या हुआ कि मछुआरा बोला अगर आप राजा बनेंगे तो सत्यवती का लड़का कैसे राजा बनेगा, तो ऐसे में मैं अपने कन्या का विवाह भीष्म पितामह से नहीं कर सकता, क्षमा करिए महाराज शांतनु से नहीं कर सकता। तो भीष्म पितामह चिंता बढ़ गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं राजा नहीं बनूँ, आप चिंता मत करो, इस बात की मैं शपथ लेता हूँ। और उस समय कोई शपथ लेता था लोग विश्वास करते थे, हर चीज नहीं कि हर चीज़ को अगर डॉक्यूमेंट करना पड़ता है या कोर्ट में नोटरी पब्लिक में आप उसको सर्टिफाई करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट का स्टैम्प लगा के, है ना, एक एक बात के लिए आप लोग कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, भीष्म पितामह के शपथ लेने माध्यम से वो मछुआरा समझ गया कि सच बोल रहे हैं और भीष्म पितामह अपने सच्चाई के लिए अपने आचरण के लिए सुविख्यात। फिर बाद में मछुआरा फिर भी जो है वो तैयार नहीं हुआ, उसने कहा कि जो आने वाले समय में जो भीष्म पितामह के जो संतानें होंगी वो राजे को हड़प लेंगी, राजे को हड़प लेंगी, फिर क्या होगा दोबारा वही समय वही समस्या आ जाएगी, फिर तो वही भय है। तो भीष्म पितामह ने तब जो है शपथ लिया, उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, भीष्म का मतलब है कि जो बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा लेता है, भारी एकदम भयानक प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, भीष्म पितामह ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि साधारण बात नहीं है एक क्षत्रिय के लिए, है ना, क्षत्रिय के लिए सामान्य बात नहीं, ब्राह्मण के लिए कहना बहुत साधारण बात है, लेकिन क्षत्रिय के लिए कहना बहुत कठिन कार्य है। इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद भी मान लो कोई अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहे विवाह ना करना चाहे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्षत्रिय का साम्राज्य होता है, क्षत्रिय का ऐश्वर्य होता है, उस ऐश्वर्य के बीच में रहकर अगर कोई ब्रह्मचर्य का व्रत ले रहा है ये बहुत बड़ी बात है। इसे भीष्म पितामह जो है साधारण भाजन नहीं थे, इसलिए भागवत में लिखा, भागवत के छठे स्कंध में लिखा हुआ है, स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलादो भीष्म जनको बलि भया सकी भय। यमराज जी कह रहे हैं कि हम सब जो 12 लोग हैं, हम सब धर्म के अधिकारी हैं, हम सब महाजन हैं, हम सब धर्म को जानने वाले हैं, धर्म की परिभाषा को जानने वाले हैं। और यहाँ तक ही बताया गया है यमराज जी के द्वारा कि ये सब जो है वास्तव में नाम की असली महिमा को जानते हैं। ईश्वर का वो नाम की महिमा को जानते हैं कि नाम की महिमा क्या है। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह के बारे में ये यहाँ पर बताया गया। और तो और भीष्म पितामह के बारे में ये भी बताया गया कि भीष्म पितामह जब ये भी जानते थे कि कब उनकी मृत्यु होगी, कैसे वो शरीर छोड़ेंगे युद्धभूमि में, इस सब के बारे में पहले से, और वो इच्छा मृत्यु का भी वरदान मिला हुआ था और लगभग 56 दिन बाणों की शैया में लेटे थे। 56 दिन बाणों की शैया में लेटे थे, उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। सूर्य जब उत्तरी दिशा में जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, तो उस समय जो है योगियों को शिक्षा दे रहे थे, एक योगी को किस तरह से परमात्मा का ध्यान लगाते हुए उत्तरायण के समय जो है शरीर छोड़ना चाहिए, इस बात की शिक्षा भीष्म पितामह देना चाहते। तो भीष्म पितामह जब लेटे हुए थे, उनकी एक इच्छा हुई। इच्छा क्या हुई? वो अंतिम समय में भगवान का दर्शन करना चाहते, उनकी बहुत इच्छा हुई भगवान का दर्शन कर सकूँ मैं, ऐसा कब वो समय आएगा कि शरीर छोड़ने से पहले मैं भगवान का दर्शन करूँ। और तत्काल ही वहाँ भगवान प्रकट हुए, भगवान के दिन इतने प्रसन्न हुए, है ना, मन उनका गदगद हो गया। साक्षात परम भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, बाणों की शैया में लेटे हैं और बाण जो है शरीर में लगे हुए हैं। अर्जुन ने यहाँ तक भीष्म पितामह ने अर्जुन को कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जल मिल जाएगा, युद्ध भूमि के बीच में जल लाना इतना आसान नहीं, और वो गंगा जी का जल ही थे, तो गंगा जी का जल जो है गंगा जी वहीं प्रकट, गंगा जी वहीं प्रकट हुए कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में। अर्जुन ने वहीं पर बाणों के द्वारा भेद के पृथ्वी को भेद कर वहीं से गंगा जी को प्रकट कर दिया भीष्म पितामह ने। तो भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे हुए हैं और पांडव और भगवान कुछ कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान को कि हे भगवान आप सामने खड़े हैं, आप कृपा करके इन पांडवों को कौरवों का कुछ उपदेश दीजिए। तो भगवान ने कहा कि आप बड़े हैं, आप पितामह हैं, हम सबसे अब हम सबके पितामह हैं, कृपा करके आप धर्म दे दीजिए, आप देंगे तो ठीक लगेगा, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। तो इस तरह से भीष्म पितामह ने जो है धर्म उपदेश दिया। और युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से पूछा, क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि परम भगवान कौन है, परम देवता कौन है, और सर्वोच्च धर्म क्या है, और मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। तो भीष्म पितामह ने क्या उत्तर दिया? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया कि कृष्ण ही परम भगवान है, वही परम देवता है। सामने खड़े भगवान भीष्म पितामह के ध्यान से देखिए, दुर्योधन ये सब पहले भी सुन चुका होगा लेकिन आंखों में पर्दा डाला हुआ। उसे दिनराज के बारे में बताया कि वह आध्यात्मिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से दोनों ही अंधे थे, वो जानते थे कि कृष्ण भगवान है लेकिन फिर भी वो कौरवों के साथ गए हैं मोह के घर। तो भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, भीष्म पितामह ने क्या उत्तर दिया भीष्म महाराज को, कि कृष्ण ही परम देवता परम भगवान है और उनके पवित्र नामों का उच्चारण करना ही सर्वोधर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महामंत्र जो है यही सर्वोच्च धर्म है और इसके उच्चारण मात्र से ही हमें भव सागर से छुटकारा मिलता है, और कुछ करने की आवश्यकता। तो भीष्म पितामह जैसे जो धर्म अधिकारी हैं या महाजन हैं, ऐसे लोग जब ऋषि बनते हैं तो ऐसे जो साम्राज्य है, ऐसा जो देश है वो समृद्ध होता है। इसलिए भगवान गीता में कहा एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषियों में दुहु, कि ये जो दिव्य ज्ञान है वो राजऋषियों के द्वारा प्राप्त किया। कौन से राजऋषि? यही तो राजऋषि भीष्म पितामह जैसे राजऋषि, भीष्म पितामह जैसे राजऋषियों ने प्राप्त किया, और वही दिव्य ज्ञान जो है आज हमें कई वर्षों के बाद हमें भी प्राप्त हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर कई बातें बताई गई हैं और इससे ये स्पष्ट होता है कि दुर्योधन ने पूरा प्रयास किया राजनीति की अपनाने के लिए और अपने शब्दों के ज्ञान के द्वारा शब्दों का दुरुपयोग करके वो ये बताना चाह रहा है कि हम हर तरीके से जो है सुरक्षित हैं, हमारे साथ भीष्म पितामह हैं, उनके साथ भीम हैं, वो कम अनुभवी हैं, भीष्म पितामह देखिए कितने अनुभवी हैं, कितने बड़े योद्धा हैं, वो हमारे साथ हैं। तो इस प्रकार जो है दुर्योधन जो है वो उत्साह बढ़ा रहा, सबका उत्साह बढ़ा रहा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये सब वर्णन किया गया। तो हमें बता रहे थे कि दिव्य ज्ञान जो है हमें बताया कि परंपरा के द्वारा राजऋषियों के द्वारा प्राप्त हुआ, अगर आप देखें शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्य में चौथे अध्याय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, सबसे पहले परम भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देवी गोस्वामी को दिया। सूर्य देवी गोस्वामी को कब दिया? 12 करोड़ साल पहले। और मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को कब दिया? 10 लगभग 20 लाख साल पहले। कितना इसमें देखिए गैप है। तो यहां पर केवल विवश्वान का इनाम बता रहे हैं, भगवान दो ही नाम बता रहे हैं, विवश्वान और उसके बाद उनके पुत्र मनु महाराज, और मनु ने आगे जो है इक्ष्वाकु को दिया। लेकिन मनु ने इक्ष्वाकु को कब दिया? 20 लाख साल पहले। और 12 करोड़ साल पहले सूर्य देव विवश्वान को दिया परम भगवान श्री कृष्ण। और वही दिव्य ज्ञान हमें आज प्राप्त हो रहा है। तो इसका क्या अर्थ है? कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई इस तरह गैप आ जाता है तो उसको कैसे समझा। देखिए ये जो गैप है ये कोई मैकेनिकल गैप नहीं है या कोई मेटीरियल गैप नहीं है, ये कोई लीनियज का गैप नहीं है। जैसे फैमिली लीनियज होता है, वंश परंपरा में जो गैप होता है, उस तरह का गैप नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य ज्ञान को यथारूप कैसे प्रस्तुत किया, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए किताब छपी 1970 में और 10 साल तक किताब वो छपते नहीं, दोबारा क्रोनोलॉजी में ऑर्डर में नहीं छप रही है, 2012 में किताब छप रही है। अब इतने वर्ष बीत गए, 1970 और 2012 कितना हो गया? 42 ईयर्स हो गए ना, हाँ लगभग 42 साल हो गए। 42 साल के बाद किताब छप रही दोबारा, और 42 साल पहले पहले किताब छपी 1970, उसमें लिखा हुआ था 2+2=4। अब आप बताइए 2012 में तो किताब जो है 42 साल के बाद छपी है तो 2+2=5 तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसलिए केवल ये बता देना कि किताब क्योंकि छपी नहीं सीरीज में, उसके एडिशन जो है कंटिन्यूसली पब्लिश नहीं, पब्लिकेशन नहीं हुआ, इसलिए 2+2=5 होना चाहिए। ये कहते हैं, इसको कहते हैं साइन। इसलिए ये दिव्य ज्ञान, ये भगवद गीता का जो ज्ञान है, इसको विज्ञान बताया गया, साइंस बताया गया है। जिस तरह से 2+2 हमेशा 4 रहता है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है और हमेशा जो है पश्चिम दिशा में उसका अस्त होता है, तो ये विज्ञान कभी क्योंकि बदलता नहीं है, कि किताब में लिखा हो या ना लिखा हो इसको कोई मायने नहीं, इसको कोई फर्क नहीं। भीष्म पितामह जो बता रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है, अपने समक्ष खड़े होकर बता रहे हैं, लेटे लेटे बता रहे हैं कि ये ही परम भगवान है, सामने खड़े हैं, है ना। ये सत्य जो है आज भी है, ये सत्य जो है अनंत काल से है, इसको बदला नहीं जा सकता। सत्य, सत्य का मतलब परम सत्य, साधारण सत्य नहीं। इस संसार का जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन परम सत्य नहीं। क्योंकि यहां के सत्य में क्या द्वंद्व भरा हुआ है, यहां के सत्य में क्या है द्वंद्व भरा हुआ है, डुअलिटी है, इल्यूजन है। हम ये कहें कि प्रभु जी बैठे हुए हैं इसमें, ये बात सत्य नहीं है, सत्य है ये बात, सत्य है कि बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए इनकी वास्तविक पहचान भी नहीं। चलो ये बैठे हुए हैं बोल रहे हैं, और 20 साल पहले अगर हम पूछे हैं तो ये तो यहां पर थे ही नहीं, और अगर होते भी तो इस शरीर में नहीं होते। तो इन्होंने अपना सत्य बदल दिया, इनकी अपनी सच्चाई बदलती रही। हालांकि संसार के अंदर में, समाज के दृष्टि में ये सत्य व्यक्ति है, सच्चे व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, कोई कपट नहीं किया इन्होंने, कोई पाप कार्य नहीं किया, जेनुइन व्यक्ति है। लेकिन हम कहेंगे कि जब तक हम माया के वशीभूत है, हम धोखा दे रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि ये वो व्यक्ति है ही नहीं। अगर पासपोर्ट में आप बार बार फोटो बदलते रहे तो आपको क्या लगता है आपको वहां एयरपोर्ट में क्या करेंगे? छोड़ नहीं। एक व्यक्ति ने एक बार क्या किया था, अपने लड़के को भेजना था उससे यूएस, लड़के को वीजा मिल नहीं रहा था, पिताजी का पासपोर्ट लिया और फोटो हटा के अपना फोटो डाल दिया, वीजा उसको टिकट विकट मिल गया और वो पहुंच गया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट उसको मिल गया, वही पुलिस स्टेशन में उसकी खूब धुलाई हुई, वो फोटो पहचाने तुरंत पकड़ ली कि ये फोटो जो है इसे चिपकाया निकाल की गड़बड़ गया। तो इसी तरह से अगर इनका शरीर बदल रहा है और ये कहें कि ये वही व्यक्ति है ये, तो बताइए ये भ्रम नहीं है तो क्या है? ये झूठ है सत्य? आप बताइए कि अगर आप 20 साल के बाद 25 साल के बाद बोले कि आप वही व्यक्ति हैं, लेकिन आप शरीर तो बदल गया पूरा, आप कैसे कह रहे हैं कि आप वही व्यक्ति हैं? तो आत्मा की दृष्टि से आत्मा जो कि वही है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप वही व्यक्ति हैं। शरीर के कारण कभी नहीं बोला जाता है कि आप वही व्यक्ति हैं। ये आप चैलेंज कर सकते हैं किसी को, किसी के शरीर के कारण कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि मैं वही व्यक्ति हूं। अगर कोई कह रहा है तो वो झूठ कह रहा है, वो धोखा दे रहा है। शरीर में तो परिवर्तन तो हो गया, आप अभी बच्चे नहीं है। अगर आप वही व्यक्ति हैं तो आप अभी क्यों नहीं लॉलीपॉप खा रहे हैं बताइए। तो कहने का मतलब है कि बेसिकली क्या है कि जब शरीर बदल जाता है तो फंक्शन बदल जाते हैं, आपका स्थान बदल जाता है, आपके विचार बदल जाते हैं, आपका वातावरण बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो कैसे कह सकते हैं कि आप वही व्यक्ति? लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, जो भगवद्गीता में उपलब्ध है, हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है, भगवान का जो अस्तित्व है, नाम का जो अस्तित्व है, भगवान के रूप का जो अस्तित्व है, उनकी लीलाओं का जो अस्तित्व है, ये कभी नहीं मिलता बदलता है। भगवद्गीता की शिक्षाएं, ये जो श्लोक महाभारत के जो श्लोक है, ये जो लीलाएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इस प्रसंग को पढ़ रहे हैं, ये कभी नहीं बदलेगी। और इनकी जो शिक्षाएं, उनकी शिक्षाएं मिल रही हैं, ये भी कभी नहीं बदलेगी। आज मॉडर्न एजुकेशन में क्या डिफेक्ट दिखाई पड़ रहा है? मॉडर्न एजुकेशन में ये सबसे बड़ा डिफेक्ट ये दिखाई पड़ रहा है कि हमारे मॉडर्न एजुकेशन में हमेशा परिवर्तन होता रहा है। थ्योरी बदलती रही हैं, जब थ्योरी भी बदल गई है तो साइंस कैसे हो सकता है? साइंस का बेस एक थ्योरी होता है कि नहीं? और अगर थ्योरी आपकी बदलती रहे तो फिर किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का साइंस? तो बेसिकली क्या है कि साइंस जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल नॉलेज पे बेस्ड है, आज का साइंस। लेकिन ये जो साइंस है भगवद्गीता का, श्रीमद् भागवत का, ये वास्तविक सत्य के ऊपर आधारित है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, जिससे कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र जो है वो पूर्ण विज्ञान को प्रस्तुत करता है। शास्त्रों में से परिवर्तन देखेंगे नहीं आप, शास्त्रों में कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, शास्त्रों में कोई संशोधन नहीं हो रहा है, शास्त्रों को कभी गलत साबित नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। शास्त्रों की वाणी हमेशा सत्य दिखाई पड़ रही है, शास्त्रों में जो भविष्यवाणी की गई है हमेशा दिखाई पड़ रही है। भीष्म पितामह आज से 5,000 साल पहले विष्णु सहस्रनाम में चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध के अवतार के बारे में बताया गया, 5,000 साल पहले भगवान बुद्ध प्रकट हुए, बोल गया है कि नहीं? श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जिनकी भविष्यवाणी करीब लगभग 80 उपनिषदों में दी गई है, श्रीमद् भागवत में प्रत्यक्ष रूप से दी गई है, हाँ, और कई ऐसे पुराण में दी गई। चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 500 साल पहले श्री रामायण प्रकट हुए। इसी तरह से परम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया, इसी तरह से अन्य अवतारों के बारे में बताया गया, अथर्ववेद में, महाविष्णु पुराण में, यहाँ तक प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भविष्यवाणी, यहाँ तक जीसस क्राइस्ट के बारे में भविष्यवाणी है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, और ये सब प्रकट होते हुए दिखाई पड़े हैं। शास्त्रों की हर बात सत्य नजर आ रही है, सत्य दिखाई पड़ रही है। ये शिक्षाएं जो है हमें सत्य दिखाई पड़ रही है आज के समय में। आज भी ऐसे लोग हैं, दुर्योधन जैसे लोग हैं, आज भी जो है भक्त है पांडवों की तरह, श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से। श्री प्रभुपाद जी ने पांडवों की संख्या बढ़ा दी है पृथ्वी में, इसलिए सेवा जब मंदिर बनाते हैं तो हम कहते हैं पांडव सेवक, कौरव सेवक नहीं कहते कभी भी, है कि नहीं? मंदिर का निर्माण होता है तो क्या सेवा देते हैं? पांडव सेवा। तो पांडवों की सेवा है मंदिर का निर्माण, यानी भक्तों की सेवा। लेकिन कौरवों का अपना भी राज्य है, साम्राज्य है, और कौरव जैसे लोग भी दिखाई पड़ेंगे, दुर्योधन जैसे लोग भी समाज में भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ेंगे, उनकी संख्या ज्यादा है, भक्तों की संख्या कम है। लेकिन अंततः जो है भक्तों की विजय होती है, क्योंकि भक्तों के साथ परम भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि कितनी संख्या कितनी बड़ी है या कम है। आकाश में तारे बहुत सारे हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का महत्व है। कोई बोले कि देखिए आकाश में तारे बहुत सारे हैं, इससे तारे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि क्या होता है देश में कई बार होता क्या है कि लोग इस प्रकार से आंदोलन छेड़ते हैं, जनता ही करती है कई बार, ये कहकर क्या कि हम माइनॉरिटी हैं, हम बहुत छोटी संख्या में हैं, इसलिए हमें अधिकार ज्यादा मिलना चाहिए, हमें सुरक्षा ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत कम हैं। इसका मतलब क्या है कि गुणवत्ता का तो आधार ही नहीं है, क्वालिटी बेस्ड नहीं है। आप तारों की तरह फैल गए हैं एक तरफ, लेकिन आप यही देख रहे हैं माइनॉरिटी, तो सूर्य और चंद्रमा भी तो एक ही है, सूर्य केवल एक ही है सृष्टि में, चंद्रमा केवल एक ही है सृष्टि में, लेकिन सूर्य का महत्व है, चंद्रमा का महत्व है, तारों का उतना मैं तो नहीं है। तारों का प्रकाश जो है वो सूर्य के ऊपर आधारित है, चंद्रमा का प्रकाश जो है सूर्य के ऊपर आधारित है। तो एक सूर्य का महत्व है, इतने सारे नक्षत्रों का महत्व नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये देखा जाए कितनी संख्या में कितने लोग हैं। जैसे हमने बताया कि कोई कथा हो रही है तो वहाँ तो 5 लाख लोग आते हैं, वहाँ 1 लाख लोग आते हैं, पंडाल पूरा भरा हुआ है, आदमी कार्यक्रम में तो मुश्किल से 100-200 लोग बैठे हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि गुणवत्ता कहाँ पर है, क्वालिटी कहाँ पर है, भगवान की भक्ति कहाँ पर है। इसलिए भगवद्गीता को पढ़ते हुए, भगवद्गीता में जो सार प्रस्तुत किया गया, भगवद्गीता का जो उद्देश्य है वो भक्ति योग की स्थापना करना, भक्ति योग की स्थापना करना, धर्म की स्थापना करना है, ये भगवद्गीता का उद्देश्य। कितने लोग भगवद्गीता के माध्यम से भक्ति योग की स्थापना कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो भगवद्गीता को व्याख्या देकर ये बताना चाह रहे हैं कि भगवद्गीता का सार भक्ति है, कृष्ण भक्ति है। भगवद्गीता का सार स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है, वो ही सार है, परम भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं सार है भगवद्गीता के, और उनकी सेवा ही सार है। ये टिकाएं जो है इस तरह उपलब्ध नहीं समाज। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, श्रील प्रभुपाद जी की अपार कृपा है कि हम सबको जो है इस प्रकार की विचार करने का, भगवद्गीता को समझने का, इन शास्त्रों को समझने का, सही दृष्टिकोण से समझने का मौका मिला है। और केवल समझने का ही नहीं, उसका अभ्यास करने का भी हमें मौका मिला है कि नहीं। इस तरह से हम पूर्ण रूप से क्या है, पर्याप्त है, यानी सफिशियंट है। तो इस प्रकार से पांडवों की सेना की तरफ रहेंगे तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, भले जो है कृष्ण शास्त्र शस्त्र ना उठाएं, उनका रहना ही पर्याप्त है कि नहीं। कृष्ण जहाँ पर है संपूर्ण ऐश्वर्य संपूर्ण शक्ति वहाँ पर विराजमान है, साक्षात जो है शक्ति भी कृष्ण के साथ हमेशा रहते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए हमें। तो ये कहते यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? क्योंकि दुर्योधन में उत्साह रहा था ना, उनको लग रहा था कि भीष्म पितामह जो है अपने क्षमता के अनुसार युद्ध नहीं कर रहे हैं और एक एक करके हमारे जितने बड़े बड़े योद्धा मारे जा रहे हैं। तो भीष्म पितामह को जो इस प्रकार की उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा कि भैया ऐसा लग रहा है कि आप तो युद्ध नहीं कर रहे अपनी क्षमता के अनुसार, तो भीष्म पितामह भी क्षत्रियों को इस तरह से कहते ना, एक अपमान की बात होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन भीष्म पितामह एक भारी दृष्टिकोण था, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण क्या था? भीष्म पितामह जो है कृष्ण को उस वीर रस में, उस युद्ध के रूप में देखना चाहते, ये उनका भाव है, क्षत्रिय का भाव है। भीष्म पितामह जो है कृष्ण को भी एक क्षत्रिय के रूप में देखना चाहते, वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, ये उसका आंतरिक कारण था भीष्म पितामह के इस प्रकार युद्ध करने का। क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं अर्जुन के ऊपर प्रहार करूंगा, रक्त को ही तोड़ डालूंगा मैं, और कृष्ण जो है अपने बाण को धनुष को उठा ही नहीं पाएगा और रथ भी टूट जाएगा, तब भगवान कृष्ण मजबूर हो जाएंगे अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए, आक्रमण करने के लिए। तब क्या देखा कि अर्जुन का रथ भी टूट गया, और तो और इससे पहले तो अभी गर्दन उड़ जाता अर्जुन का, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा नहीं हुई कि रथ को ही जमीन में और नीचे ढक दिया, रथ और नीचे चला गया, तो इस तरह से बाण ऊपर से निकल गया। लेकिन बाद में फिर क्या किया, बाद में भीष्म पितामह ने ऐसा प्रहार किया, बाणों का प्रहार किया कि वो बाण उठाई धनुष उठा ही नहीं पा रहे थे अर्जुन, तो इतने तेजी से बाण चल रहे थे भीष्म पितामह के, है ना। और इससे क्या हुआ कि रथ ही टूट गया, और जब रथ टूट गया तो अर्जुन नीचे आ गए, और भगवान भी सोचने लगे क्या किया जाए, ये भी तरीका है कि मुझे अब रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो गया अर्जुन पक्का हार जाए 100% अर्जुन। तो फिर क्या किया भीष्म पितामह ने, रथ के पहियों को उठाया और बड़ी भगवान कृष्ण रथ के पहियों को उठाया और भीष्म पितामह की ओर भागे, जिस तरह से एक शेर जो हाथी की तरफ भागता है, ऐसा बताया गया हमारे। तो इस तेजी से, इस क्रोध से उनके आंखें लाल थी, बाल उनके सारे खुले हुए थे कृष्ण के, और पहिए को रथ के पहिए को उठाया हुआ था, और बड़ी तेजी से वो भागे जा रहे भीष्म पितामह की ओर, और बाद में उनको रोक रहे थे क्या भी क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बता रहे हैं विश्वनाथ जी ठाकुर बोल रहे हैं कि भगवान जी का बता रहे हैं, कौन त्या प्रति जाना ही नामे भक्त अपनी कि हे कुंत पुत्र आप घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों ऐसा बोल रहे हैं विश्वनाथ जी के ठाकुर कह रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान ऐसी घोषणा करेंगे तो वो तो मर्यादा को भंग करने वाले हैं, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पालन करना उनके लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए वो अपने भक्त को बोल रहे हैं कि अगर भक्त ने वचन ले लिया तो उस वचन को भगवान नहीं पकड़ते। इसलिए आप देखते हैं कि अर्जुन की रक्षा इसलिए कर रहे हैं भगवान, भीष्म पितामह की रक्षा इसलिए नहीं कर रहे हैं, भीष्म पितामह की ओर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान के साथ में धर्म की स्थापना करने में भगवान का सहयोग दे रहे हैं। इससे शिक्षा ये भी मिलती है कि भक्तों का संग करते हुए सावधान होना चाहिए कि हम असत संग में ना फंस जाएं। तो इस प्रकार की कई शिक्षाएं मिलेंगी, क्योंकि अगर महाभारत को केवल एक्सटर्नल विजन से पढ़ेंगे तो महाभारत में आपको बहुत सारी त्रुटियां नजर आएंगी। अगर आप भक्तों की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो माने महाभारत पढ़े रामायण पढ़े सब गलत नजर आएगा। हाँ जी द्वारका में नहीं द्वारका में द्वारका हाँ द्वारका में सेना थी नारायणी सेना भगवान की। हाँ कौरों के पक्ष कौरों के पक्ष 10 करोड़ योद्धा थे। हाँ पांडव समय में बचती है कोई नहीं बचा कौरों के साइड में कोई भी नहीं बचा। हाँ क्योंकि वो कौरों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं ना। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जब नारायणी सेना कौरवों की तरफ से लड़ रही है तो उस समय ना सोचिए कि वो नारायणी सेना है, वो फिर माया के कार्य करती है। क्योंकि जैसे ही जो अभक्त जो है असुर जो भगवान की शक्तियों का उपभोग करना चाहते हैं तो लक्ष्मी जो है माया के कार्य करती है। इसी तरह से सीता जी जो है रावण के बाजू लेकिन वो असली सीता नहीं है, छाया सीता है, ऐसा दिया गया है कुरु पुराण में या बरा पुराण में दिया गया है कि वो छाया सीता थी, यानी कि छाया मतलब माया, असली सीता नहीं है। तो वही लक्ष्मी जी जो है फिर माया के रूप में आती है। तो दुर्योधन से की नारायणी सेना मेरे पास आ गई और नारायणी सेना अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करेगी वो नहीं कर पाएगी, वो प्रदर्शन जो होगा वो माया की दृष्टि से होगा, क्योंकि भगवान के विरुद्ध हो रहा ना वो। जिस तरह से बिजली है, बिजली जो पावर हाउस में भेजने वाले के लिए बिजली है, अब आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, ठंडा करते हैं गर्म करते हैं वो आगे। इसलिए अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति ये कंसेप्ट जो है भौतिक जगत का कंसेप्ट है, इस भौतिक जगत का विचार है अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति। लेकिन भगवान की दृष्टि से भगवान क्या बोल रहे हैं, देवे ही ऐश गुणमयी मोह माया ये त्रिगुणमयी माया, भगवान कह रहे हैं देवी ही माया है मेरे लिए तो डिवाइन एनर्जी है ये। माया को भी डिवाइन बोल रहे हैं भगवान, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान की यही डिवाइन, क्योंकि बिजली वाले के लिए क्या है, जो बिजली घर में बैठा है उसके लिए तो बिजली है ना सर, वो तो आपने उसको ठंडा कर दिया, उसको हीटर में कन्वर्ट कर दिया या उसको एयर कंडीशन वाले ठंडा कर दिया आपने, दैट इज योर प्रॉब्लम। भगवान की दृष्टि में तो सब कुछ ही अंतरंगा है, उनकी अपनी ही शक्ति है सब, वो सब भगवान के सब कुछ दिव्य है। इसी तरह से भगवान के शुभ भक्तों के लिए भी सब कुछ दिव्य है। इसे प्रभुपाद कहते हैं पूरा जगत जो है ये भगवान का धाम। प्रभुपाद ने कहा कि मुझे कोई रोक नहीं सकता कहीं जाने से, प्रभुपाद जी का बोल क्यों, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो भगवान का राज्य है और मैं उनके भक्त हूँ, तो मुझे किस बात की चिंता, मुझे कोई डर नहीं है कि नहीं। तो ये जो इस प्रकार के जो कॉन्शियस हो जाता है, इस प्रकार की जो भावना हमारी हो जाती है, उस तरह की भावना जाती है जो महाभागवतों की होती है, जब प्रभुपाद जी की है, वो हर स्थान को जो है भगवान का धाम ही देखे। जब प्रभुपाद अमेरिका गए वहाँ पहाड़ी हो जाके जब दिखाया बहुत विशाल एकदम जमीन थी, लगभग 3,000 एकड़ वहाँ पे इतनी जमीन वहाँ पे थी, प्रभुपाद जी ने पहाड़ी देखी, वहाँ पे नदी बहती हुई देखी, कुंड जैसे स्थान देखे। प्रभुपाद जी ने कहा ये तो नव वृंदावन है, प्रभुपाद जी को वहां रहकर वृंदावन का स्मरण हो रहा है अमेरिका में पहाड़ियों को देखकर, ये तो जैसे न्यू वृंदावन प्रभुपाद ने, ये गोवर्धन है, ये यमुना जी है, ये राधा कुंड है। प्रभुपाद जी ने कहा यह सत देवालय, यहाँ पर जो है 7 मंदिर होने चाहिए वृंदावन के, जो विग्रह हैं राधा गोविंद जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, इन सबका मंदिर इन 7 पहाड़ियों में होगा जी। तो प्रभुपाद जी जहाँ भी जा रहे हैं वो तो वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को उन्होंने नाम दिया न्यू जगन्नाथपुरी, लॉस एंजल्स को नाम दिया न्यू द्वारकापुरी, रुक्मिणी द्वारका भी। तो उस भाव की जो है उनकी दृष्टि भी भगवान भगवान की ध्यान से ही होती है, क्योंकि वो भगवान के अंतरंग शक्ति का पूरा उन्हें आश्रय। महात्मा ना सुमान पर तो दैवी प्रकृति आश्रिता, महात्मा जो है दैवी प्रकृति का आश्रय लिया, यानी भगवान के स्वरूप शक्ति का आश्रय लिया, लेकिन दुर्योधन ने तो माया शक्ति का आश्रय लिया। इसलिए वो सोचे कि नारायण की सेना मेरे साथ है तो लक्ष्मी नहीं है, वो माया है। होते ना लक्ष्मी जी, अगर आप कोई लक्ष्मी जी को स्वतंत्र रूप से पूजा करता है तो मुल्लू में बैठ के आती है, वो माया है, वो चंचल बन जाती है। जो आदि लक्ष्मी है नारायण के साथ है वैकुंठ जगत में है, वो चंचल नहीं है, वो भगवान के चरणों में हमेशा स्थिर रहती है। लेकिन वैकुंठ जगत जो इस जगत में वैकुंठ जगत नजर आता है, इसे चंचल मानी जाती है, लक्ष्मी चंचला मानी जाती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी यहाँ पर जब आती है तो किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रहते, इसे दुर्योधन के साथ भी नहीं है, भले नारायण से ना हो कुछ भी हो, सिद्धारण सबने का प्रयास। ठीक, हरे कृष्ण। देखिए सरल भाषा में बताएं या जटिल भाषा में बताएं, समझ में आना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। आप आम कहिए खाइए, या आम कहिए, या मैंगो कहिए, या कुछ और भाषा में उसका नाम लीजिए, पॉइंट ये है कि आम खाने लायक होना चाहिए, खट्टा हो तो मजा नहीं आएगा। गुहे तो यही है, भक्ति योग जो है भगवद गीता का जो विषय है वो सबसे गुहे, नौ अध्याय जिसे होता है राज परम हुए ज्ञान है ना, उसी में भगवान बता रहे हैं मन मना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कारो, मुझे मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम नमस्कार करो, कुछ तो करो। भगवान बोल रहे हैं गीता में ये परम हुए ज्ञान है, परम हुए ज्ञान है कि भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे भक्त बनो, है कि नहीं। बातें बहुत सारे हो गई, कर्म योग, सांख्य योग, ये योग, ध्यान योग वगैरह वगैरह, लेकिन असली बात तो ये है कि आप मेरे भक्त हो, और भक्त बनने का मतलब है भगवान ही चाहते हैं अर्जुन से कि उनकी इच्छा के अनुसार वो कार्य करें। हाँ, तो सर जब भक्ति करने के लिए कहें तो भगवान ये बता रहे कैसे भक्ति करनी है, क्या गुरु के पास जाइए, उनकी शरण लीजिए, और नम्रता पूर्वक सेवा की भावना से उनसे जिज्ञासा करिए, वो आपको सब कुछ बताएंगे कि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इस तरह से जब हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें भक्त के पास जाना पड़ता है भक्ति करने के लिए। फिर वो बात की सोए भक्त वृंद की
जो बात है।